सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरुवें हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने उजून है सतत केवल ज्ञान पाने उजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हम सभी लोग विचार की निरंतर प्रक्रिया से होने वाले लाभ के बारे में विचार कर रहे हैं। कोई भी विचार, चाहे वो अच्छा हो या कि बुरा हो, यदि वो निरंतर किया जाए तो हमारे भीतर एक संस्कार निर्मित होता है और वो संस्कार हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए हमने पिछले दिनों ये तय किया है कि हम अज्ञानतावश अभी तक जो बुरे विचारों को निरंतर करते रहे हैं, उससे बचने के लिए अच्छे विचारों को निरंतर करने का प्रयत्न शुरू करेंगे। अच्छा विचार यानी संसार की वास्तविकता का विचार, जो चीज जैसी है उसे वैसा ही विचार करना, भ्रम में नहीं पड़ना, ताकि हमारे जीवन में जो जीवन हमने भ्रम पूर्वक अज्ञानता पूर्वक जिया है उससे हमें मुक्ति मिल सके। विचारों की निरंतरता हमारे भ्रम को तोड़ती है, हमारे अंदर संस्कारों को सुदृढ़ करती है और हमें वास्तविकता से परिचय कराकर अच्छा जीवन बनाने के लिए प्रेरित करती है। आचार्य भगवंतों ने संसार की नश्वरता, संसार में अशरण, इस संसार की सुख दुख की चतुर्गति भ्रमण और अपने अज्ञान की चर्चा, सुख दुख को एक अकेले हम भोगते हैं, शरीर भी हमसे पृथक है और अत्यंत अपवित्र है, निरंतर मन वचन काय की क्रिया से कर्मों का प्रवाह हमारे भीतर बना ही रहता है, अपने आत्म पुरुषार्थ को यानी ज्ञान और वैराग को हम जागृत करके उस कर्म के प्रवाह को रोक सकते हैं, और इतना ही नहीं, अपने इच्छाओं को जीत करके हम उस अज्ञानतावश संचित कर्मों के दबाव को भी कम कर सकते हैं। लेकिन जिस संसार में हम रहते हैं वो संसार कैसा है, इस बारे में भी विचार करना चाहिए। इस लोक के बारे में तरह तरह की मान्यताएं, तरह तरह के भ्रम प्रचलित हैं। हमें इस लोक की संरचना के बारे में, उसके आकार प्रकार और संस्थान के बारे में विचार करना चाहिए, उसके स्वरूप के बारे में विचार करना चाहिए। लोक के वास्तविक शब्द स्वरूप का विचार करने से कर्तृत्व बुद्धि से हम मुक्त हो जाते हैं। कैसे? हमने ये मान रखा है कि इस लोक की संरचना किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर नाम के व्यक्ति ने की है और वही इस संसार में सुख दुख जन्म मरण को निर्धारित करता है। और ऐसा मान करके हम अपने जीवन को अत्यंत पराधीन और दीनहीन मान करके जीवन जीते हैं। जो भी भला हो जाता है हमसे उसका श्रेय खुद ले लेते हैं और जो भी बुरा हो जाता है उसे भगवान के मत्थे डाल करके निश्चिंत हो जाते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति इस लोक की संरचना को, लोक के स्वरूप को ठीक ना समझ पाने की वजह से है। किन्हू न करे न धरे को षट द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही विन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। इस लोक की वास्तविकता ये है, यह षष्टि किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, न ही कोई इसे धारण करता है, न ही इसे कोई नष्ट करता है। यह तो क्षय द्रव्यों से मिलकर बनी हुई अनादि अनिधन संरचना है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो यूनिवर्स की परिभाषा बनाई है कि वेयर देयर इज एवरीथिंग इज एग्जिस्ट इज कॉल्ड यूनिवर्स। जो चीजें अस्तित्व में हैं वे जहां पाई जाती हैं उसका नाम है लोक। अस्तित्व में छह ही चीजें हैं, सोल, नॉन सोल, मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट, टाइम एंड स्पेस। ये साइंस की भाषा है। ये छह ही चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और ये जहां एग्जिस्ट करती हैं, जहां रहती हैं। लोक के अंते षड द्रव्याणी यत्र सा लोका, जहां छह द्रव्य दिखाई पड़ते हों वह लोक है। यह लोक के बारे में अत्यंत सुव्यवस्थित सुनिश्चित एक विज्ञान, एक दृष्टि हमें दी गई है। जिन दर्शनकारों ने, जिन मान्यताओं ने भगवान को या ईश्वर को इस लोक का कर्ता माना है वे भी इससे सहमत नहीं है। और गीता में श्री कृष्ण के मुख से कहलवाया गया है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति विभु स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, लोग पता नहीं किस भ्रम में है कि मैंने इस सृष्टि को किया है, मैं इस सृष्टि का कर्ता हूं। नहीं, मैं इस सृष्टि का कर्ता नहीं हूं, ना ये सृष्टि मेरा कर्म है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, यह तो स्वाभाविक रूप से उत्पाद व्यय और द्रव रूप परिणमन करती रहती है। बताइए आप, यह इतनी सी चीज, और आज हर व्यक्ति के मन में यही आता है, भगवान ने जैसा चाहा वैसा हुआ, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ये भगवान सात में आसमान ऊपर बैठा है क्या? एक एक लोग मानते हैं सात में आसमान के ऊपर। अब आसमान तो एक ही होता है, अब सातवां कहां से आ गया? और फिर कोई कोई का मानना है कि नहीं, वो तो भगवान ही उसको धारण किए हुए हैं, फिर जब वो करवट लेते हैं तो भूकंप भूकंप आ जाते हैं, हाँ फिर बाद में जब वो स्थिर रहते हैं तो सब मजा रहता है, फिर एक दिन जो है वो उसको हिला डुला करके वो पूरा नष्ट कर देंगे, फिर से नई सृष्टि बनाएंगे। ये नाना प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन हम देखें कि उन सब के बीच सच्चाई क्या है। सच्चाई इतनी ही है कि इस लोक को किसी ने ना बनाया है, ना कोई इसे धारण मैनेज और मेंटेन भी नहीं करता, ना इसे कोई नष्ट कर सकता है। ये तो अपनी इंट्रिंसिक क्वालिटी है हर द्रव्य की कि वो अपना परिणमन स्वयं ही करता है। चेंजिबिलिटी विद परमानेंस इज द नेचर ऑफ सब्सटेंस। हर द्रव्य का यह स्वाभाविक गुण है कि वह परिवर्तनशील होते हुए भी शाश्वत बना रहता है। कोयले को जलाने पर राख बन जाएगी, लेकिन पुद्गल द्रव्य वहां पर फिर भी ज्यों का त्यों बना रहेगा, पर्याय बदल जाएगी। और इस संसार में हम ऐसा ही होते देखते हैं, तब फिर इस सच्चाई का चिंतन करना चाहिए। इस सच्चाई का चिंतन करने से यह जो संसार में कर्तापने का भाव है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। वरना हम तो इस सृष्टि का कर्ता ईश्वर को मान लेते हैं और अपने आप को कम से कम अपने परिवार का कर्ता धर्ता मान लेते हैं। जो लोग समाज के किसी पद पर होते हैं वे अपने आप को समाज का कर्ता धर्ता मान लेते हैं। जो लोग किसी देश में किसी पद को पाल लेते हैं, मंत्री संतरी वाला, तो वो फिर देश के कर्णधार हो जाते हैं। हाँ, ऐसा एक अहंकार, जबकि वस्तु का परिणमन किसी का मोहताज नहीं है, वो स्वतः ही अपने स्वाभाविक गुणों और पर्यायों के द्वारा निरंतर होता रहता है। इससे हमारे कर्ता बने की बुद्धि नष्ट होगी। दो छोटी छोटी सी घटनाओं से अपन समझ सकते हैं कि ऐसा कर्तापन क्या हमारा ठीक है जो हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। जैसे अच्छा तो नहीं लगेगा, लगेगा कि हाँ ये तो बात ऐसी है, पर अपन क्या ऐसा करते हैं ऐसा। वो एक बकरी, धूप बहुत थी तो एक बैलगाड़ी के नीचे खड़ी हो गई धूप से बचने के लिए। फिर बाद में बैलगाड़ी चली तो वो छाया भी आगे बढ़ी, तो बकरी ने सोचा अपन तो छाया में चलो, तो बकरी ने भी छाया में नीचे नीचे चलना शुरू किया। थोड़ी देर में बकरी सोचती है कि अरे ये बैलगाड़ी तो मेरी दम पर चल रही। अब बताओ आप उस बकरी को कौन समझाए, उसको तो फिर भी समझा सकते, अपने आप को कौन समझाए कि अपन बेकार में करता धरता बने गए। हर जीव यहां अपने पुण्य पाप के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है और हम सोचते कि हमारी वजह से चल रहा सब। हम एक दिन दुकान पे नहीं बैठे सो पैसा नहीं आए सो देख ले हम पर के कैसे चलत घर चलाओ, ऐसा लगने लगता है। लेकिन यह जो हम कमा रहे हैं यह हमारे अपने पुण्य पाप के द्वारा है, और वो जो हमारी इस कमाई को भोगने वाले लोग हैं उनका भी हमसे कोई देना लेना है, इसलिए पा रहे हो, धोखे में नहीं रहना। उनका पुण्य होगा तो आपको उनके लिए मेहनत करके लाके रखना पड़ेगा, भोग करेंगे वे और आप करोगे परिश्रम। यह चीज अगर समझ में आ जावे तो इससे क्या होगा, इससे परिणामों में अत्यंत निर्मलता और समता भाव आएगा। इससे संसार में आशक्ति ना हो करके अनाशक्ति होगी। यही श्री गुरु लोक भावना के द्वारा हमें कहना चाह रहे हैं। लोक के स्वरूप का अकेले चिंतन कर लेना हमारा मकसद नहीं है। हमारा उद्देश्य तो उस लोक के स्वरूप का विचार करके अपने कर्तापने के भाव से मुक्त होकर के और संसार से विरक्त होकर समता भाव धारण करके जीवन जीने का, यह उद्देश्य इस लोक भावना का है। शिवाजी एक समय अपनी रैयत के रियासत के राजा थे, छोटी छोटी रियासतें होती थी उनके राजा थे। अब जब खाने की सामग्री कम पड़ने लगी तो भंडार खुलवा दिए गए, और इतना ही नहीं ऐसे कैसे दे दें, तो कुछ काम करो। तो जिसको अपन राहतकारी कहते हैं वो राहतकारी चलने लगा कि चलो यहां की रोड बनाओ, वहां पर नाली बनाओ, यहां कुआं खोदो, ये काम शुरू हो गए। और शिवाजी ऊपर टेकरी पर खड़े होकर के हजारों की तादाद में जो मजदूर काम करते थे उनको देखते रहते थे। शिवाजी के गुरुजी ने कई बार इस दृश्य को देखा और समझ गए कि अब तो मेरे इस शिष्य के अंदर अहंकार आ गया है। किस बात का? कि सारी रियासत को मैं ही जिलाए रखे हूं, इनके जीवन के लिए दाना पानी मैं ही जुटा रहा हूं, मैं नहीं हूं तो इनका जीना मुश्किल पड़ जाएगा। जबकि सब अपने अपने आयु प्राण से जीते हैं, हम दूसरे को आयु प्राण दे नहीं सकते, अन्न दे सकते हैं लेकिन क्या करें, अहंकार तो अहंकार है, आ गया। अब लेकिन उस अहंकार को कैसे तोड़ा जाए, तो शिवाजी के गुरुजी थोड़े से विशेषज्ञ थे इस बात के कि किस स्टोन में और कैविटी हो सकती है, जैसे कि कोई जियोलॉजिस्ट जानता है कि कैविटी किस में बनेगी, और उस कैविटी वाले स्टोन को जो कि वहीं कहीं पास में ही पड़ा था, शिवाजी को बुलवा करके कहा कि ये इतना बड़ा पत्थर यहां पड़ा हुआ है, शिवा अपने काम करने वालों से कहो तो कि इसे तोड़ करके एक तरफ डाल देवे और जरा रास्ता चौड़ा हो जाए। शिवाजी ने कहा अभी दे लो गुरुजी, और आ गए मजदूर और पत्थर तोड़ा, तो तोड़ते ही सात पत्थर उसमें से एक मेंढक उछल करके बाहर आ गया। अब सब आश्चर्यचकित कि अरे इस पत्थर के, इतने ठोस पत्थर के भीतर मेंढक और थोड़ा सा पानी। अब मुस्कुरा करके शिवाजी के गुरुजी शिवाजी से कहते कि शिवा इस पत्थर के भीतर दाने पानी का इंतजाम भी तुम ही करते होगे इस मेंढक का। अब समझ में आ गया शिवाजी को कि अगर उसने वहां जन्म लिया है तो उसका इंतजाम उसके जीवन का वहां आपोआप है, हम व्यर्थ ही और दूसरे के पुण्य पाप के कर्ता बनते हैं। अपने पुण्य पाप के, अपने भावों के कर्ता तो हम हो सकते हैं, लेकिन संसार भर के कर्तापने से मुक्त होने के लिए हमें संसार और इस लोक की वास्तविकता का विचार करना चाहिए। लोक के स्वरूप का चिंतन करने से उपयोग में एकाग्रता आती है और राग द्वेष से हम बच जाते हैं। इतना ही नहीं, हमें अपने आत्मा के अभिमुख होने की दिशा मिल जाती है और इस लोक में भ्रमण का क्या कारण है ये मालूम पड़ जाता है। ये दो 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 लाभ होते हैं। 14 राज उतंगनव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत हैं बिन ज्ञान। ये भ्रमण का कारण मालूम पड़ गया और लोक का स्वरूप मालूम पड़ गया कि ये तो 14 राजू उत्तंग है, इसमें नीचे 7 राजू अधोलोक है, मध्य में मध्यलोक है और ऊपर 7 राजू ऊर्ध्वलोक है, और इस तरह से ये 14 राजू लोक की 6 द्रव्यों से मिलकर जो अनादि निधन संरचना है उसमें यह जीव इस पूरे लोक में, कितना विस्तार है इस लोक का, इस लोक के इस विस्तार में जीव भ्रमण करता रहता, और भ्रमण का कारण क्या है? अज्ञान, मेरी अपने स्वरूप से विमुखता। तो देखिएगा, अगर भ्रमण का कारण समझ में आ गया कि स्वरूप से विमुखता, तो इसका मतलब है प्रयत्न क्या करना चाहिए, अपने स्वरूप को हमेशा ध्यान में रखना। लोक का स्वरूप मुझे अपने आत्म स्वरूप को जानने की प्रेरणा देता है और मेरे अपने आत्म स्वरूप को मैं भूल करके ही इस लोक में भटकता हूं, सो मेरी इस अज्ञानता से भी मेरा परिचय करा देता। अगर इस तरह हम लोक के स्वरूप का चिंतन करें और उससे अपने अज्ञान को हटाने और अपने आत्मा के स्वरूप को जानने का उपक्रम करें, तो यह लोक भावना हमारे उस आत्मस्वरूप की प्राप्ति में, उस वीतराग स्वरूप की प्राप्ति में कारण बने। आत्मस्वरूप जब मैं कहता हूं तो आप ऐसे किसी चक्कर मत पड़ जाए पड़े करे कि किसी किताब में लिखा होगा कि ऐसा ऐसा है स्वरूप, ऐसा ऐसा सो वैसा वैसा सोच लिया। कल्पना करने का काम नहीं है आत्मस्वरूप का। आत्मस्वरूप तो यही है, रोजमर्रा के जीवन में देख लो ना, गुस्सा करके कई बार देखा मजा नहीं आया, क्षमा भाव धारण करने में बहुत मजा आया, आत्मस्वरूप है मेरा क्षमा भाव धारण करना, काहे को और कहीं जा रहे। कौन सी पोथी में से 50 बातें याद करेंगे कि ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप, रट लो, रटने से क्या होने वाला। अरे रोजमर्रा के सुबह से शाम तक के जीवन में जिनसे मेरे परिणामों में समता आती है वे सारे परिणाम मेरे अपने स्वरूप के हैं, और जिनसे मैं व्यथित हो जाता हूं, संक्लेश और अहंकार कर लेता हूं, तो संक्लेश अहंकार वो मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा देर नहीं ठहरा जाता, स्वरूप में ज्यादा देर ठहरा जाता और हमेशा ठहरा जा सकता, वही मेरा स्वरूप है। तो जब जब आत्मस्वरूप की चर्चा हो, यानी राग द्वेष से मुक्त अवस्था ही मेरा स्वभाव, इतनी सी बात, ओ मैं करता हूं सुबह से शाम तक रात राग द्वेष अपने पराए का मेरे तेरे का भाव, उसमें जरा सा कमी लाऊं और करना क्या है। दिन भर में मेरे कुछ क्षण ऐसे मेरे जीवन में वे बीते जिनमें कि मैं मेरे तेरे से जरा ऊपर उठ जाऊं, जग की आशा मेरे लिए जो संसार में कुछ पाने की प्राप्ति की आकांक्षा है वो मेरी घट जाए और मेरे तेरे का भाव घट जाए, इतना ही आत्मस्वरूप की प्राप्ति या आत्मस्वरूप के सम्मुख होने का अर्थ है। भाई कोई गैर पढ़ा लिखा भी होवे तो भी ये बात समझ में आती है। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि भैया वीतराग भगवान की जब छवि देखते हैं तो भगवान तो बोलते नहीं तो हितोपदेशी हैं ये मालूम नहीं पड़ता। भगवान सब जानते हैं सो उनकी सर्वज्ञता भी बिना बोले कैसे मालूम पड़ेगी। तो मालूम क्या पड़ता है, दिखता क्या है, वीतरागता दिखती है। जबकि भगवान वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, दिखाई क्या पड़ता है, न सर्वज्ञता दिखाई पड़ती है न हितोपदेशीपना दिखाई पड़ता है, दिखाई तो पड़ती है वीतरागता। इसलिए गैर पढ़ा लिखा भी होवे तो भी बात समझ में आती है कि राग द्वेष न करना, पोथी पढ़ना या न पढ़ना, जी आप जानो, राग द्वेष न करना, मोह न करना, इस लोक में रह करके और यह हम कर लेवे तो इस लोक के शीश पर हमारा वास होगा, इतनी सी। मैट सब जग की आशा, निज पद में थिर होए लोक के शीश करो आशा। अगर हम इस लोक भावना को करते करते उसी में रम जावें, उसी में लीन हो जावें, तो लगेगा कि मैं, हंसी आएगी अपने आप ही कि मैं व्यर्थ छोटी छोटी चीजों का कर्ता बन जाता हूं और अहंकार और ममकार करने लगता हूं, व्यर्थ ही राग द्वेष बढ़ाता हूं, मेरे तेरे का भाव करता हूं। अरे भाई अब तो थोड़ा थोड़ा बैठेंगे, ये सब नहीं करेंगे, इन सब से थोड़ी देर का विश्राम, इन सब से विश्राम का मतलब है अपने स्वभाव के सम्मुख होना और कुछ नहीं। मैं ये जो अपने स्वभाव से विमुख हूं इसका मतलब ये है कि मैं संसार के इस राग देश और प्रपंच में फंस गया हूं और कुछ नहीं। और मैं वहां से अगर मुक्त हो जाता हूं तो कहां आऊंगा, लौट करके वापस आना पड़ेगा, वहीं के वहीं अपने स्वभाव में आना पड़ेगा। ऐसा यदि हम पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें, रोज थोड़ा सा समय निकाल करके, अब तो विचार की पद्धति की दो बातें और शेष रही हैं, इसलिए अब इससे पहले कि विचार की वह पद्धति की 12 बातें पूरी हों, अपन अपने जीवन को गति दें और थोड़ा सा समय 10 मिनट का 12 मिनट निकाल लें, कम से कम एक एक मिनट एक विचार के लिए। 12 भावनाएं हैं तो 12 प्रकार से विचार करना है तो 12 मिनट में आराम से आधी घड़ी है, एक घड़ी 24 मिनट की, तो आधी घड़ी, चलो कहते तो यही है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में हूं आध, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ये जो सद विचार हैं, ये जो सद संगति है, उसके लिए मेरे पास आधी घड़ी भी हो और आधी में हूं आध, उतना भी मैं अगर रोज निर्धारित कर लूं एक समय, तो बहुत आसानी से और इस चीज से हम लाभान्वित हो सकते हैं, ये विचार की प्रक्रिया हमें लाभ दे सकती है। लोक का एक अर्थ और लिया है, आत्मा, लोक के मायने सृष्टि तो है ही जो कि छह द्रव्यों से मिलकर के बनी है, लेकिन लोक के मायने हैं आत्मा, और इसीलिए कहना पड़ा कि लोक कैसा है, पुरुषाकार। जैसे कि कोई पुरुष अपने ही कमर पर दोनों हाथ रखकर पैर फैला करके खड़े हो जाए तो उसका जो आकार है वही लोक का आकार है, यानी सारा लोक इस आत्मा में ही समाया है। इस पुरुषाकार संरचना को देख ले अगर तो लोक इसी में समाया है। नाभि से नीचे अधोलोक और नाभि से मध्यलोक और नाभि के ऊपर सो ऊर्ध्वलोक, और विचार करें तो ऐसा ही है। मेरे अपने पतन का कारण क्या है और मेरे अपने उत्थान का कारण क्या है? अगर मैं नाभि में बैठा हूं मध्यलोक में तो अपने पतन के लिए भी उपाय कर सकता हूं और अपने उत्थान के लिए भी उपाय कर सकता हूं। मेरे ही भीतर उत्थान पतन की सामर्थ्य है, मैं ही अपनी सृष्टि का कर्ता भोक्ता और स्वामी, अपनी सृष्टि का जो मैंने बनाई है अपने राग द्वेष से, ये जो बनी हुई है ये किसी ने नहीं बनाई, लेकिन मैं अपने भीतर एक सृष्टि एक संसार निरंतर बना करके चलता हूं जो मेरे राग द्वेष से निर्मित होता है, और आत्मा ही उसका कर्ता भोक्ता और स्वामी बन जाता है। और अगर वो अपने इस कर्ता भोक्ता और स्वामी बने से मुक्त हो जाए तो वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर के वो लोक के अग्रभाग में निवास करेगा। अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में निवास करना ही लोक के अग्रभाग में निवास करना है। ऐसे नहीं समझना कि वहां पहुंच जाएंगे तो अपने स्वरूप में पहुंच गए, तो वहां तो सिद्ध शिला पर तो एक इंद्री जीव भी विराजे हैं और वहीं पर सिद्ध भगवान भी है। सिद्ध भगवान वहीं पर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं और जो एक इंद्री हैं वे अपने संसार में स्थित हैं। इसलिए लोक के अग्रभाग पर पहुंचने के मायने हैं अपने स्वरूप में स्थिर रहना, अपने आत्मा के जो राग द्वेष परिणति है उस राग द्वेष परिणति से बचते रहना। और एक अर्थ और है, लोक यानी समष्टि, समष्टि यानी समग्र, होलनेस में टोटलिटी में किसी भी चीज को देखना, यानी अत्यंत व्यापक विशाल और उदार हृदय होना, ये एक अर्थ और है लोक का। और अगर ये भी अपने जीवन में आ जाए व्यवहारिक रूप से ही सही, निश्चय से तो लोक का अर्थ आत्मा है, व्यवहार से छह द्रव्यों से मिलकर के बनी हुई संरचना है, और व्यवहार से ये अर्थ है लोक का कि वो हृदय के समान विशाल है, उदार है, जिसमें सब कुछ समा जाता है। भाई इस लोक के स्वरूप का चिंतन करते हुए अगर हमारे हृदय में भी ऐसी ही उदारता और विशालता आ जावे, प्राणी मात्र के कल्याण का भाव अगर हमारे जीवन में आ जावे, तो ये लोक भावना ऐसी हमारे जीवन को अच्छा बनाने में भी कारण बन सकती है। लेकिन हृदय की विशालता ना होकर के संकुचित हृदय हम लोगों के धीरे धीरे होते जा रहे हैं, अपने तक ही सीमित है, दूसरे का बने बिगड़े हमें क्या मतलब, हमें तो अपने आप से मतलब है। ये सेल्फिशनेस नहीं कहलाती, ये मीनलीनेस कहलाती है, ये ध्यान रखना। नहीं तो सेल्फिश होना तो बहुत अच्छी चीज है, सेल्फिश होना गलत नहीं है। इंग्लिश की डिक्शनरी में देखना आप, अपन जनरली कह देते हैं बड़े सेल्फिश हैं, बड़े स्वार्थी हैं, नहीं बड़े मीनली हैं। सेल्फिश होना मतलब अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना, ऐसा व्यक्ति तो सबके प्रति उदार ही होगा, विशाल चित्त वाला हृदय वाला होगा, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होगा वो सबको अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते देखना पसंद करेगा, वो किसी का बिगाड़ काय को करेगा, किसी से राग द्वेष काय को करेगा। अगर ऐसा भी हमारे भीतर विचार आ जावे कि मेरे हृदय को मुझे इतना विशाल और उदार बनाना चाहिए कि जिसमें सबके कल्याण की बात समा जाए, जिसमें सब जीवों को स्थान मिल सके, सबके लिए जगह मिल सके। आकाश द्रव्य का स्वभाव है कि वो सबको अवगाहना देता, तो क्या आकाश के समान हमारे मन में ये विशालता और उदारता नहीं आ सकती कि हम सबको जगह दे सकें, सबका ख्याल रख सकें। ऐसी बात कहने से थोड़ा सा कई बार ऐसा लगने लगता कि अपन जैसे अध्यात्म से खिसक गए हों, लेकिन बिल्कुल नहीं खिसके। अध्यात्म ज्यों का त्यों बना रहेगा। अकेले कहने से कोई नहीं खिसकता अध्यात्म से, यह तो भावनात्मक हमारे भीतर एक स्थिति है, एक अवस्था है, जब हम ऐसा विचार करते हैं कि सबका कल्याण। कभी अगर समय हुआ तो 16 कारण भावना पर विचार करेंगे जब, तो उसमें पहली नंबर जब दर्शन विशुद्धि भावना का विचार करेंगे तो उसमें आएगी ये बात कि सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में अंतर क्या है। तो इतना ही बारीक सा अंतर दिया हुआ है कि जिसमें अपने आत्म स्वरूप के समान ही दूसरे का भी आत्म स्वरूप है और उसको भी अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जैसी मैं अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति करना चाहता हूं, यह जो भावना है वो दर्शन विशुद्धि भावना। ये फिर अपन कभी बैठेंगे तो बात करेंगे। यह भावना लोक भावना भाते समय भी यही हमारे भीतर होनी चाहिए कि मेरे जीवन से सबका उपकार हो, मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊं। ऐसा बनाने वाले तो सिर्फ तीर्थंकर अरंत और सिद्ध भगवान ही हैं, जिनसे कि सबका उपकार होता, किसी का उपकार नहीं होता। ऐसी उस अवस्था को प्राप्त करो, अरंत और सिद्ध अवस्था को, जिससे कि इस संसार में और किसी का मेरे से अपकार ना हो, सबका उपकार हो। हृदय में सब समा जाए, यानी केवल ज्ञान मुझे प्राप्त हो जावे जिसमें कि सारे सकल चराचर अपने आप प्रतिभासित हो जाते हैं। वो अवस्था की बात है अगर हम यहां से शुरू करें कि प्राणी मात्र के उपकार की भावना। आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं, पता नहीं मैंने सुना दी है या नहीं सुनाई, कभी कभी भूल भी जाता हूं। एक पेड़ के ऊपर पक्षी या तोता रहा करता था, याद आया आपको? आ रहा नहीं? नहीं आ रहा। चलिए और थोड़ा सुनाते हैं, शायद याद आ जाए। तो बदल दूंगा मैं जल्दी से, पूरी नहीं सुनाऊंगा। और वो तोता जब से उसका जन्म हुआ तब से उसी वृक्ष पर रहता था। उसने अपने जीवन को, अपने जीवन के सुख दुख को, सबको उसी वृक्ष पर रह करके ही झेला था, सहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस जंगल में जिस वृक्ष पर वो रहता था एक शिकारी शिकार खेलने आया और उसने वृक्ष के नीचे खड़े हुए हिरण को बाण मारा। हिरण तो भाग गया लेकिन वो बाण उस वृक्ष के तने में जाकर के धस गया और विष से बुझा हुआ बाण था और उसी में धसा रहा। वो विष धीरे धीरे वृक्ष में जाता रहा और वृक्ष की जड़ें सूखने लगी, वृक्ष के पत्ते सूख करके झरने लगे और वृक्ष भी नीचे से खोखला हो गया। रिश्ता कब तक चलता भैया? किसी भी रिश्ते को देख लो, जब तक अपना स्वार्थ सत्ता तब तक चलता, इससे ज्यादा नहीं चलता। कितने ही बढ़िया से बढ़िया रिश्ता क्यों ना हो, और उस पर रहने वाले पक्षियों का कितना रिश्ता था वृक्ष से, यही कि रात आसानी से बिताएंगे, उसके फल फूल खाएंगे, उसकी छाया में बैठेंगे, लेकिन अब उसमें छाया नहीं रही, फल फूल नहीं रहे, तो रिश्ता खत्म। धीरे धीरे करके सब पक्षियों ने विदा ले ली, जो हरे भरे वृक्ष थे उन पर अपना निवास बना लिया, लेकिन यह पक्षी उसी वृक्ष पर अभी भी रह रहा है जबकि वृक्ष सूख चुका है। अब क्या हुआ? अब थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अब बिल्कुल कहानी बच्चों वाली हो गई, कि फिर जैसे बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों, फिर उसके बाद में जब वो वृक्ष पर तोता बैठा रहा और ज्ञानी वहां से, और उसको दाना पानी भी नहीं मिलता था, तब देव लोग आ गए। हाँ ऐसे करते ना अपन, वैसे ही मान लो अपन भी थोड़ी देर के लिए बच्चे बन करके क्या फर्क पड़ता, बड़े तो हमेशा ही बने रहते हैं अपन, हैं? बहुत कठिन है बड़े होकर के छोटे बन जाना, बहुत मुश्किल होता। देव लोग भी उसकी परीक्षा करने आ गए। उस पक्षी से कहा कि यहां तो दाना पानी ही नहीं है, छोड़ो उस वृक्ष को, आओ हम दिखाते हैं तुम्हें बड़े बड़े हरे भरे वृक्ष जिनमें फल फूल भी है, जिनके निकट जल के स्रोत भी हैं, तुम वहीं पर रहना। उस पक्षी ने इनकार कर दिया। उसके इनकार को देख करके और देवताओं को मन में आया कि लगता तो है ये कि कोई ना कोई इसके मन में वृक्ष के प्रति भाव है, तुम क्यों नहीं इस वृक्ष से जाना चाहते, इतना कष्ट सहने के बाद भी इस वृक्ष को क्यों नहीं छोड़ते। उसने कहा कि बचपन से जिसने मुझे बड़ा किया, जिसने मुझे पाला पोषा, आज उसे विपत्ति में छोड़ करके कैसे चला जाऊं। मैं इस पे कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा आज के बच्चों के लिए, उस क्या कहूंगा मैं, वो तो अच्छे भले छोड़ के चले जाते हैं, फिर तो ध्यान ही नहीं रखते, वो 50,000 रुपए सैलरी मिलने लगे बस, फिर माता पिता का क्या मतलब, तभी तक है जब तक की सर्विस नहीं लगी और अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, थोड़ी सैलरी मिलती है तब भी घर में ही बने रहते हैं क्योंकि खर्चे वर्चे जरा ठीक से चल जाएंगे, घर में रहने से कम रहेंगे खर्चे, फिर जरा अच्छी सैलरी मिलने लगे, फिर आश्वासन भी देते हैं कि हम तुम्हें मनी ऑर्डर से भेजते रहेंगे पैसे, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर पत्र आना शुरू होता है कि अब देखो एक बच्चा हो गया और उसके खर्चे भी हैं और फिर बहुत बढ़ गए हैं, तो अब कम भेज पाएंगे हम, फिर बाद में तो चिट्ठी भी आना धीरे धीरे बंद हो जाती, नहीं होता ऐसा। हो सकता है कि मैंने गृहस्थी नहीं की तो मुझे ये सब बातें झूठी मालूम हो, आपने की आपको सही मालूम होंगे, लेकिन हमने भी देखा है गौर से इन सब चीजों को, क्यों ऐसा हो जाता है, हमारे भीतर उतनी विशालता नहीं है ना, उतनी उदारता नहीं है, हम बहुत संकुचित हो गए, अपने सुख सुविधा के लिए ही हम विचार कर पाते हैं, दूसरे का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाता, हम उसे कोई स्पेस नहीं देते हैं, अपने लिए स्पेस तो हर जगह चाहते हैं कि एक जगह हमारे लिए हो, लेकिन अपने हृदय में भी किसी के लिए जगह मुझे देनी है, ये भाव होना चाहिए। मेरा कहने का तो सिर्फ इसका सा ही आशय और कोई विशेष गुण। और जैसे ये बात उस देवता ने उस पक्षी से सुनी कि विपत्ति में जिसने मेरी परवरिश की है, जिसने मीठे मीठे फल खिलाए हैं, आज उसका उस पर विपत्ति है तो कैसे छोड़ के चला जाऊं, तो देवताओं ने कहा कि पक्षी भाई हम तुमसे बात खुश हैं, मांग लो तुम्हें जो वरदान मांगना हो। बस अब वरदान मांगना हो तो बड़े कंफ्यूजन क्रिएट होते अपन तपन में, तो वो तो सीधा साधा भोला प्राणी था, उसको ऐसे कंफ्यूज होने की बात ही नहीं थी, अपन से कोई कहे कि मांग लो तो अपन कहेंगे थोड़ा ठहरो बाकी हिसाब से सराह लेंगे हम क्या क्या मांगना चाहिए है कि नहीं, किसमें नहीं फंसेंगे, किसमें कम इनकम टैक्स लगेगा, ये सब चीजें अपन दिमाग लगाएंगे। उसने मालूम क्या मांगा, सबके समझ में आ गया होगा कि हे देवता, अगर मेरे इस विचार से तुम सहमत होकर प्रसन्न हो और मुझे कोई वरदान देना चाहते तो इतना ही चाहता हूं कि इस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दो, मेरे अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कर सको तो इस वृक्ष को हरा भरा कर दो। भाई ऐसा अपने जीवन में भी भाव आने में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल हो, अपन एक बार सोच लें तो अपने भीतर भी इस तरह का भाव आ सकता है कि मेरा अपना जीवन तो ठीक चले ही चले, मेरा अपना कल्याण तो हो ही, लेकिन क्यों ना और सब जीव भी अपना कल्याण करने के रास्ते को प्राप्त करें, सबका कल्याण हो, इस तरह परस्पर कल्याण मित्र बनना, साता वेदनी के उदय से और साता वेदनी के आगे बंध के कारणों में अकलंक स्वामी ने तत्वार्थ राजवार्तिक में उल्लेख किया है कि ऐसा कल्याण मित्र बनना और या ऐसा कल्याण मित्र मिलना, ये आज के समय में बहुत दुर्लभ है। लोक भावना हमें कल्याण मित्र बनने की सलाह देती है। हम सबके लिए कल्याण का रास्ता दे सकें, हमारे जीवन से किसी का भी उपकार हो सके तो हम पीछे ना हटें, अपकार होने लगे तो जरूर पीछे हट जाएं। और इस तरह अगर अपने जीवन को जीते हैं तो वही जीवन बहुत अच्छा जीवन कहलाएगा, इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोतावो, तव शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां, हे निर्मल हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रण, मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो, भानु शिव कानी है अनुभवताय, वेखो जीवों के जताय वेखो, काबू न सताय वेखो भव्य उदयानी है, जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम उदक करु सुदीप सुधूप फलार्घ के हवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रजे
जा।